ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है असुरराज हिरण्यकश्यपु। श्लोक संख्या 46। भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभू भजति उत्सृजति भजति उत्सृजति अन्यस् तच्चापि स्वेन तेजसा। भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चव देहानो उच्चवचान् विभू भजत्य उत्सृजति अन्यस् तच्चापि स्वेन तेजसा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भूत पांच भौतिक तत्वों से, इंद्रियां 10 इंद्रियां, मनहा तथा मन, लिंगान लक्षणयुक्त देहान स्थूल शरीरों को, उच्च अवचान उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग को, विभु जीवात्मा जो शरीर तथा इंद्रियों का स्वामी है, भजति प्राप्त करता है, उत्सृजति त्याग देता है, ही निसंदेह अन्य पृथक होने से, तत् उस च भी अपि निसंदेह स्वेन अपने, तेजसा उच्च ज्ञान की शक्ति से। अनुवाद। पांच भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे वह उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जाती है, शक्ति है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। तात्पर्य, बद जीव को ज्ञान होता है और यदि वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों का उपयोग जीवन के वास्तविक विकास में करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। अतएव यहाँ यह कह गया है कि वह अपनी उच्च बुद्धि से स्वेन तेजसा सही स्रोत अर्थात गुरु या आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति से अपने बद जीवन को भौतिक शरीर में छोड़कर भगवत धाम वापस जा सकता है। किंतु यदि वह अपने को संस्कार के अंधकार में रखना चाहता है तो वह भी कर सकता है। भगवान इसकी पुष्टि भगवद गीता में 9:25 में इस प्रकार करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितरम यान्ति पितृता भूतान यान्ति भूतेजय यान्ति मध्या जिनो विमाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवता बनकर जन्म लेंगे, जो भूत भूतों की पूजा करते हैं वे ऐसे जीवों के बीच जन्मते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं पूर्वजों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। मनुष्य का शरीर मूल्यवान है, कोई चाहे तो इस शरीर का उपयोग उच्च लोकों तथा पितृलोक जाने के लिए कर सकता है या इसी अधोलोक में रह सकता है, किंतु यदि यह प्रयत्न करे तो भगवत धाम वापस जा सकता है। यह शक्ति परमात्मा रूप में भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतः भगवान कहते हैं मता स्मृति ज्ञान गोहनम च, मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। यदि कोई भगवान से असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह बारम्बार शरीर धारण करने के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भगवान की भक्ति स्वीकार करता है और उनकी शरण में जाता है तो भगवान उसे भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु यदि कोई मूर्खतावश अपने को अंधकार में रखना चाहता है तो वह भौतिक जीवन बिता सकता है। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब साधक भक्तों के लिए और प्रभुपाद जी का बहुत ही गहरा तात्पर्य है। और सभी भक्तों से आचार्यों से प्रार्थना करते हैं और जिन पूर्ववर्ती भक्तों से वर्तमान भक्तों से सुना है जो समझा है उसके आधार पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार श्री प्रभुपाद जी 22nd Avenue में थे। 22nd Avenue प्रभुपाद जी का पहला सेंटर था। तो वहाँ पर एक हिप्पी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, यहाँ पे सारे हिप्पी क्यों नहीं आते? अधिकांशतः हिप्पी तो पॉवरी स्ट्रीट में चले जाते हैं, यहाँ तो बहुत कम आते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, फ्री विल, स्वेच्छा। तो इस तात्पर्य में हम देखते हैं कि प्रभुपाद स्वेच्छा के ऊपर बात कर रहे हैं और साथ में ही भगवान का चरित्र बता रहे हैं कि भगवान कैसे हमें पूरा स्वतंत्रता देते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा का उपयोग कर सकें। श्लोक है, हिरण्यकश्यपु अपने भाई के परिवार को सांत्वना दे रहा है और सांत्वना देते देते वो ये पुराणों की कथा सुना रहा है। और इस पुराणों की कथा में यमराज जी एक छोटे बालक बन के आए हैं और राजा सुयज्ञ की पत्नियां रो रही हैं उनके देहांत होने पर, और छोटे बालक बन के यमराज जी ये सारे श्लोक बोल रहे हैं। वास्तव में हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं। तो बोले, भूत इंद्रिय मनोलिंगान देहानु उच्च विचान विभू भजति उत्सृजति ही अन्यस तच्चापि स्वेन तेजसा। इस श्लोक में तीन वर्ड्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने जोर दिया स्वेन तेजसा। स्वेन तेजसा मतलब अपनी शक्ति से। जीव तो बहुत छोटा होता है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, और वो तो अक्षम है, पूर्ण रूप से हर स्थिति के लिए परमात्मा पर निर्भर है, फिर भी उसके अंदर शक्ति है। स्वेन तेजसा, अपनी शक्ति से वो चाहे तो देवताओं के लोक में जा सकता है, चाहे तो पितृलोक में जा सकता है, चाहे इसी पृथ्वी पर रहे, चाहे तो भगवत धाम वापस चला जाए, अपनी शक्ति से, क्योंकि बस उसकी शक्ति है। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए विभू शब्द इस्तेमाल हुआ है। विभू, अक्सर भगवान को विभू बोला जाता है और आत्मा को अणु बोला जाता है, लेकिन इस अणुरूपी आत्मा में भी बहुत शक्ति है। इस संसार के एटम बम में इतनी शक्ति है, तो हम एक अणु हैं, पार्टिकल हैं भगवान के, हमें बहुत शक्ति है। उस शक्ति को कैसे चैनलाइज करना है, इस प्रभुपाद इस परपट में बता रहे हैं, और इस शक्ति के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तो ये स्वयं तेजसा प्रभुपाद कह रहे हैं, अपने ही शक्ति से, अपनी शक्ति से कैसे, सुपीरियर नॉलेज से, जो हमें सुपीरियर पावर मिली है, सुपीरियर नॉलेज से, उच्च शक्ति मिली है, उच्च ज्ञान से। और इस उच्च ज्ञान के प्रभुपाद ने तात्पर्य में दो सोर्स बताए हैं। किसी ने ध्यानपूर्वक तात्पर्य सुना हो तो बताएंगे कौन कौन से सोर्स हैं दो उच्च ज्ञान प्राप्त करने के? हाँ, एक तो है आचार्य गुरु और दूसरे परमात्मा। एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अंदर से परमात्मा, अगर आप भक्ति करते हैं, आपने शरण ली है, परमात्मा सारी फैसिलिटीज देंगे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण तैयार हैं आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, पूरा ज्ञान देंगे। और दूसरे हैं गुरु। अब डिपेंड करता है हमने अपनी फ्री विल, अपने तेजस को कैसे यूज करना है। बहुत ही लाभदायक श्लोक है हमारे लिए, बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये जो फ्री विल है, ये जो स्वेच्छा है जो अणु जीवात्मा को दी जाती है, ये स्वेच्छा भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इट इज अ गिफ्ट। ये गिफ्ट तो फ्री है, लेकिन इस गिफ्ट का अगर हमने गलत उपयोग कर लिया, उसका रिएक्शन फ्री नहीं है, टैक्स फ्री नहीं है, उसमें टैक्स लगेगा अगर हमने इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो। एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ दिल्ली में आए थे, तो उनसे एक भक्त ने पूछा कि महाराज, भगवान ने जीवात्मा को स्वतंत्रता दी ही क्यों है? सारा खेल इसी कारण है ना, कोई चॉइस होती, चुपचाप सरेंडर करा देते, सारा काम भगवत धाम पहुँच रहे थे, इतना लफड़ा, पता नहीं कहाँ कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, क्यों? आपने अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग कर लिया, दी क्यों है स्वेच्छा, कोई जरूरत नहीं है हमें स्वेच्छा। तो महाराज ने उत्तर दिया कि जो कृष्ण है बहुत ही विचित्र भगवान है, इज एन अमेजिंग गॉड। कैसे? कि उन्होंने जीवात्मा को स्वयं स्वतंत्रता दी, और वो जानते हैं इस भौतिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं आए हैं उनसे द्वेष करके आए हैं, उनसे लड़कर आए हैं, फिर उनको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी स्वतंत्रता दी कि आपकी इच्छा है मुझसे घृणा करो या प्रेम करो। ये हैं भगवान हमारे पिता। जैसे कई बार हमारे एक मित्र थे जो कि छोटे गांव से आए थे, हमारे साथ जॉब करते थे दिल्ली में, तो बता रहे थे जब वो गांव छोड़कर दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उनके पिताजी ने उनको बोला कि बेटा देखो मुझे तुम्हें पूरा विश्वास है तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, शहर में जाके उल्टे सीधे चक्रों में नहीं फंसोगे, जब तक मुझे ये विश्वास है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस दिन ये विश्वास टूट गया मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो उस लड़के बताते थे कि अभी तक वो पिताजी की बातें याद हैं, मैं कुछ भी गलत काम मेरे को आकर्षण होता है मैं रुक जाता हूँ क्योंकि मैं पिताजी का विश्वास ना तोड़ूँ। क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, अगर हमें मालूम चल जाए, हमें डिसीजन लेने की जो स्वतंत्रता है, निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है, कई ऑप्शंस में से, कई विकल्पों में से, वो श्री कृष्ण ने हमें दी है। जिस तरह से उस पिताजी ने उस गांव के बच्चे को स्वतंत्रता दी थी, तो उस बच्चे ने कभी भी गलत उपयोग नहीं किया। हमें भी मालूम चल जाए ये कृष्ण ने हमें स्वतंत्रता दी है तो हम कभी उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। हम अज्ञानता में हम सोचते हैं कि मैं ही लॉर्ड हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, इसलिए हम इसका गलत उपयोग करते हैं। और इस फ्री विल का, स्वेच्छा का उपयोग हम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, बाकी पशु पक्षी तो इसका उपयोग कर नहीं सकते। जो सिंह है, शेर है, वो हमेशा मांस ही खाएगा, गाय हमेशा घास ही खाएगी, लेकिन मनुष्य है वो मांस भी खाएगा और घास भी खाएगा, है ना। उसके अंदर स्वेच्छा है, चाहे जो मर्जी करे, है ना, उसके अंदर स्वेच्छा है। वो चाहे तो मंदिर भी आ सकता है, मंदिर चाहने के लिए वो क्या बोलता है, भगवान की कृपा चाहिए। पूरे वर्ल्ड टूर करना हो तो फिर भगवान की कृपा नहीं चाहिए, पूरे वर्ल्ड को टूर कर लेगा, मंदिर का टूर करने के लिए, केवल मंदिर के टूर के लिए भगवान की कृपा चाहिए, वर्ल्ड टूर के लिए स्वेच्छा है, है ना। तो ये हम देखते हैं कैसे कैसे लोग अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं। मंदिर में आने के लिए भी हमारी स्वेच्छा, हम आना चाहेंगे भगवान किसी भक्त से मिला देंगे, नहीं आना चाहेंगे घुमाए रखेंगे, भगवान कह रहे किसी वर्ल्ड टूर के एजेंट को भेज देंगे उसके पैसे भी ले जाएगा और घुमा देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इच्छा है, हम भक्ति में कितना आगे बढ़ते हैं ये भी निर्भर करता है हमारी स्वेच्छा के ऊपर। एक ही कक्षा में कई छात्र आते हैं, ऐसी एक ही भागवतम क्लास को कई भक्त सुनते हैं, कौन कैसे उसको स्वीकार करता है और कैसे अपने जीवन में उतारता है ये उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। प्रतिदिन हम कैसे जप करते हैं हमारी स्वेच्छा पर निर्भर है। कई बार हम जप करते करते देखते हैं कि बहुत अजीब सा विचार आ जाता है, बड़ा कामुक सा विचार आ जाता है, अरे यार कोई सोचा भी नहीं मैंने, कुछ देखा भी नहीं, अचानक पुराने संस्कारों से कोई जॉब निकल के आ जाता है, तो हम परेशान होते हैं ऐसा क्यों। तो हिज होलीनेस देवानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में बता रहे थे ऐसा इसलिए होता है कि परमात्मा आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप किस पर मेडिटेट करना चाहते हैं, मेरे नाम पर कि उस स्त्री पर या उस इंद्र के विषय पर, है ना। एकादशी के दिन जब कर रहे हैं तो द्वादशी के महाप्रसाद की याद आती है और करते रहते हैं मेडिटेट, करते रहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन पानी पे मेडिटेट करते हैं, उसी से प्यास बुझ जाती है। तो ये हमारे पर निर्भर है कि हम किस पे मेडिटेट करें। हम प्रतिदिन जप के लिए बैठते हैं, ध्यानपूर्वक जप करना है कि ऐसे ही औपचारिकता बितानी है, हमारे पर निर्भर है। भागवतम क्लास में बैठना है, अब रिलैक्सेशन टाइम आ गया, नींद पूरी करने का समय है, या ध्यान पूर्वक अपने जीवन को बदलने का समय है। ये आए हैं सोशलाइज करना है कि सेवा करनी है, हमारे पर निर्भर है। हर एक्टिविटी में, हर क्षण हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास ऑप्शंस है क्या करना है, कैसे करना है। और भगवान ने हर तरह के ऑप्शन के लिए सारी की सारी सुविधाएं दी हैं। कृष्ण का केवल यही काम है, है ना, जीव इच्छा करता है कृष्ण पूरी करते हैं, बस आपने डिसीजन लिया कृष्ण एक्शन में आ जाएंगे, चलिए अब ये करना है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। लेकिन आप देखते हैं कि हम कई बार प्रपोजल दे चुके हैं भगवान को, पूरा तो होता नहीं, होता है, हर प्रपोजल पूरा हो जाता है, ऐसा क्यों है, है? हर इच्छा पूरी हो जाती है हमारी? आप कहेंगे कर्मों के फल पर निर्भर है, चलो वो तो भौतिक इच्छा हो गई, आध्यात्मिक इच्छा मैं प्रपोजल दूं कि इस साल हम 5 लाख गीता बांटे पंजाबी बाग से, हो जाएगा। वो जो प्रपोजल है दैट शुड बी एक्शन बेस्ड। प्रपोजल खाली शब्दों का प्रपोजल नहीं होना चाहिए। भगवान जी ये करा दो, ये मेरा प्रपोजल है, आध्यात्मिक इच्छा है, आपको पूरी करनी पड़ेगी, और बैठे रहें चुपचाप। प्रपोजल के पीछे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज ने उत्तर दिया विदेशों में जाओ प्रचार करो, और प्रभुपाद लीलामृत में सेजोरिया ससुर गोस्वामी महाराज लिखते हैं लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। पूरा जीवन लगा दिया प्रभुपाद जी ने, कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष। थर्ड क्लास ट्रेन के डब्बे में आकर 2 रुपए की भगवत दर्शन मैगजीन बेचने के लिए कनॉट प्लेस में जाते थे, और लोग उन पर सिगरेट का धुआं फेंके करते थे, टाइम नहीं है चल हट यहां से, आप सोचिए। और प्रभुपाद ने हिम्मत नहीं हारी, प्रभुपाद लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और उसके बाद उनको विदेश जाने का मौका मिला इतने संघर्षों के बाद, और फिर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। और जब इस्कॉन की स्थापना की, वही प्रभुपाद जी हैं, अब देखिए क्या होता है। एक बार डेट्रॉइट में उन्होंने एक सेंटर लिया, तो डेट्रॉइट सेंटर के जो प्रेसिडेंट थे गोवर्धन प्रभु, प्रभुपाद जब वहां पर आए तो उन्होंने बोला कि अब इसका लीज खत्म होने वाला है, अब हमको छोड़ना पड़ेगा, क्राइसिस। और डेट्रॉइट में ही एल्फ्रेड फ्रोड रहते थे, है ना, जो प्रभुपाद के संपर्क में आ चुके थे। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, उसने बोला एक ऑप्शन है, एक बहुत बड़ा मेंशन है, दूर है, लेकिन आसपास का गंदा इलाका बहुत गंदा है। प्रभुपाद बोला बहुत कोई दिक्कत नहीं है, डेट्रॉइट को उस समय यूएस का क्राइम कैपिटल माना जाता था। प्रभुपाद बोला कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। चल पड़े और देखा वो बहुत सुंदर 4 एकड़ के एरिया में बना हुआ एक महल है, रियली महल। उसमें इटालियन टाइल्स हैं, बहुत सुंदर सा मार्बल है, अच्छी अच्छी हाथ के द्वारा किए हुए पेंटर्स की पेंटिंग है, और बीच में बगीचा है, स्विमिंग पूल है, फवारे हैं, और साथ साथ वहाँ पे एक छोटी सी नहर है, उसमें आप बोट में बैठ के जा सकते हैं, और सीधा डेट्रॉइट की जो मुख्य नदी उससे मिल सकते हैं। इतना बड़ा महल, सब सोचे थे कैसे। प्रभुपाद बैठ गए उनके पास, साथ में एक रियल एस्टेट एजेंट थी, प्रॉपर्टी डीलर, और व्यक्ति जिससे वो खरीदना था। तो प्रभुपाद ने सीधा ही बोला देखिए जी हम तो भिखारी हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं, है ना, तो आप क्यों नहीं इसको दान में दे देते। ये सुनते ही जो मालिक था उसकी हवाइयाँ उड़ी, क्या है, और जो प्रॉपर्टी डीलर मिली, भैया मेरे कमीशन की क्या बात कर रहे हो। तो व्यक्ति ये तो संभव नहीं है, क्या क्या बात कर रहे हो, मेरा बहुत खर्चा हो चुका है, मैं बहुत नुकसान में जा रहा हूँ, इसको पैसे। प्रभुपाद बोला ठीक है, कितना पैसा चाहिए आपको। उसने बोला $3.5 लाख। उन्होंने $3.5 लाख सारे शीशे के, उन्हें चलो प्रभुपाद क्या है कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद ने ठीक है मैं आपको $3 लाख दे दूंगा कैश में, ओके। वो जो प्रॉपर्टी डीलर थी माता जी वो पीछे पड़ गई, प्रभुपाद क्या कर रहे हो स्वामी जी, मेरे से डील करो, फिर पीछे हटाओ, बात सीधा 1-to-1 हो रही है। और $3 लाख कैश उठ गए प्रभुपाद, जेब में पैसा नहीं है, बोले मैं भिखारी हूँ, $3 लाख कैश। वापसी में बोले एल्फ्रेड फोर्ड अम्बरीश को, आपको कैसा लगा। बोला किसी भक्त ने बोला इनको अच्छा नहीं लगा, ये माया है। प्रभुपाद बोला माया भगवान की सेवा में यूज हो जाएगी। बोलो कैसा लगा। बोला ठीक है प्रभुपाद। फिर जाकर क्या किया एल्फ्रेड फोर्ड ने, और एक लेखा शक्ति देवी दास ऐसे एक नाम था, जो कि एल्फ्रेड फोर्ड के पिताजी और उनके पिताजी आपस में दुश्मन थे, लेकिन प्रभुपाद के कृपा से, प्रभुपाद के आंदोलन में आके उनकी बेटी और उनका बेटे अल्फ्रेड फोर्ड दोनों भक्त बन गए। तो उस माताजी ने दिया था लगभग $1.25 लाख, और बाकी धन दिया अल्फ्रेड फोर्ड ने, और वो जमीन खरीद ली $3 लाख। यहाँ पे प्रभुपाद जी को 2 रुपए भी नहीं मिल रहे थे, और वहां जो प्रभुपाद जी के अंदर सेवा करने की इतनी इच्छा थी, भगवान ने सारी फैसिलिटीज दी। यहाँ प्रभुपाद जी छिप्पीवाड़ा में एक छोटे से कमरे में रहते थे, देखा आपने छिप्पीवाड़ा में कमरा, और वहाँ प्रभुपाद जी पूरा महल था, वो पूरा महल वहाँ। तो ये भगवान पूरी सुविधा देते हैं, अगर हम जो भगवान को चाहते हैं अपनी इच्छा के साथ साथ हम हमेशा भक्ति में लगे रहें। तेषां सततत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। भगवान हर प्रकार की फैसिलिटीज देंगे अगर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हम केवल बोल के चुप हो गए हैं कुछ कार्य नहीं होगा। भगवान भी देखते हैं कितना सीरियस है ना। सो ये भगवान की प्रकृति है, भगवान को हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान उस इच्छा को पूरा करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये इच्छा पूरी करने में मुख्यतः हमें दो प्रकार की बाधाएं आती हैं, एक बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। आंतरिक रूप से हमारे अंदर की काम वासनाएं, हमारा मन जो हमें रोकता है भगवान के अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करने के लिए, हमारी कंडीशनिंग, ये आंतरिक रूप से। और बाहरी रूप से वातावरण, सराउंडिंग्स, जो कल्चर है, क्योंकि जो कल्चर है हम देखते हैं वातावरण ऐसा है, बहुत ही आजकल देखते हैं हम उत्तेजक वातावरण है, तो ऐसे वातावरण में हमसे गलती हो ही जाती है ना। हमें हम कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे वातावरण में उसकी उत्तेजना है, हमसे गलती हो जाएगी। और ये बाहर उत्तेजनापूर्वक वातावरण भी वास्तव में कैसे बनता है, कल्चर कैसे बनता है किसी स्थान का, किसी भी स्थान का कल्चर बनता है वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की आंतरिक इच्छाओं से। अक्सर लोग जब मंदिर में आते हैं बोले यहाँ बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस हैं, बड़ा अच्छा कल्चर है, कैसे बनता है, यहाँ पर रहने वाले भक्तों की मानसिक इच्छाओं से। और साधारणतः लोग जानते नहीं कि वो भगवान के अंश हैं, उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनकी ये मानसिकता कि हमें भोगना चाहिए, तो इस भोगने की प्रवृत्ति के कारण बाहर का वातावरण बना है। पूरा वातावरण हमें प्रेरित करता है कि हम भोग करें, हम इंद्र तृप्ति करें। तो इस वातावरण में सेवा की भावना को विकसित करना बड़ा मुश्किल है, हम सब इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर ऑन करो गलत साइट खुल जाती है, आपके ना चाहते हुए भी आपको तरह तरह के अश्लील दृश्य दिख जाते हैं, ना चाहते हुए भी आसपास बम्बांडिंग हो रही है। तो जब ऐसा वातावरण हो और मन के अंदर तृप्ति की इच्छाएं हो तो दोनों कंबाइन करते हैं और फिर हमसे गलती हो जाती है। है किसी का अनुभव ऐसा? किसी के साथ होता है ऐसा अनुभव? आसपास का वातावरण बड़ा खराब है और अंदर की इच्छा भी है, मन में इच्छा रहती नहीं रहती, मन हमेशा प्लान करता रहता है कैसे अंदर तृप्ति करें, और बाहर के वातावरण में तुरंत सुविधा मिल रही है तो हम फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे? तुरंत फिसक जाते हैं। अंटिल अनलेस हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन हो, नहीं तो हमसे गलती हो जाती है। जैसे कोई उदाहरण मिलता है आपको शास्त्रों से, बाहर के वातावरण से किसी साधक से गलती हुई हो? अजामिल, है ना। इसी ढंग से हम देखते हैं पांडु जी जब शिकार पे निकले थे, उनके एक तीर से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई जो कि अपनी पत्नी के साथ एक पशु या पक्षी बन के संभोग कर रहा था। तो ब्राह्मण ने पांडु जी को श्राप दिया कि तुम भी जब अपनी पत्नी का संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे पांडु जी ने यह सुना, उन्होंने महल छोड़ दिया, जंगल में आ गए, वानप्रस्थ ले लिया। तो वानप्रस्थ इसलिए ले पाए, उनको ज्ञान था, उनके अंदर डर था और पूरी ऐसा वातावरण था कि वानप्रस्थ का पालन कर पा रहे थे। श्री राधा राधिका रमन जी के जय, श्री कृष्ण बलराम के जय, जगन्नाथ मंदिर। और लेकिन जैसे ही पांडु ने क्या किया, इस वातावरण में वो वानप्रस्थ का पालन कर पा रहे हैं, लेकिन जब वातावरण बदला, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत मीठी मीठी हवा चल रही है, नदी का किनारा है, जंगल है और साथ में केवल अकेले में उनकी पत्नी है, तो पांडु के अंदर काम वासनाएं जागृत हुई। और पांडु जी के अंदर काम वासनाएं जागृत हैं, उनके अंदर ज्ञान भी था, उनके अंदर डर भी था, फिर भी उन्होंने मांद्रिक का संग कर लिया। तो हमारे अंदर भी कई बार ज्ञान भी होता है और डर भी होता है कि इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, फिर भी अंदर से कहा जाती है कर लो, कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। और जब पांडु ने ऐसा किया तो उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि हम अपने स्वेच्छा का सही उपयोग कर सके इसके लिए हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए और कुछ डर भी होना चाहिए, साथ ही साथ में सही वातावरण होना चाहिए। जब सही वातावरण होगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करना। हम देखते हैं साधक भक्त संघर्ष कर रहे होते हैं अपने अनर्थों के साथ, कि इंद्र तृप्ति के जो विचार है उनके साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार फिसल जाते हैं। या फिर कई बार कोई व्यक्ति प्रजल लेता है व्रत, देता है कि मैं प्रजल्पा नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे भक्तों के बीच में जाते हैं, यहाँ प्रजल्पा हो रही है, वो फिर से प्रजल्पा शुरू कर देता है, जहां से निंदा हो रही है फिर से वो निंदा शुरू करता है। तो चाहकर भी वो अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग नहीं कर पाता। तो स्वेच्छा का सही उपयोग करने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता है। इसीलिए सही वातावरण प्रभुपाद कहते थे कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, और उस भक्तों के संग में भी, क्योंकि बहुत वैरायटी है, सही भक्तों का संग करना चाहिए जो हमारे भक्ति के अनुकूल हो, जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। तो ये स्वेच्छा का उपयोग बाहरी वातावरण पे निर्भर करता है। और हम देखेंगे कि इसी जैसे भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक में बताया गया, ध्यायते विश्यान पुंसा संगत इश्यूप जायते। बाहर के वातावरण से मन पे असर क्या पड़ता है कि मन में किसी विषय को पकड़ लिया, उस पर ध्यान करता रहेगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसके प्रति आसक्ति और फिर पतन। इसलिए बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार अपने सेवक को बताया कि केवल मैं और भक्ति विनोद ठाकुर ही हम में इतनी योग्यता थी कि हम भौतिक जगत में जाते हुए भी अपनी चेतना को बनाकर रख सके। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भौतिक जगत में बिल्कुल केयरलेसली जाएगा, बिना डर के जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रभुपाद जी का ये वाक्य है। हम लोग प्रभुपाद कहते थे, मुझे अपने भक्तों से अक्सर एक ही शिकायत है कि वो माया के साथ माया को सीरियसली नहीं लेते। हम लोग भौतिक जगत में बाहर चले जाते हैं अपने काम धंधे के लिए, विश्वविद्यालयों में ऐसे ही चले जाते हैं बिना तैयारी के और बिना किसी डर के, और तभी हम पकड़े जाएंगे। तो जब हम अभक्तों से डील करें और आदान प्रदान करें तो बहुत सावधान। हम भक्त लोग भी प्रचार करने जाते हैं, कहीं हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, पुस्तक वितरण पर जाते हैं, तो बहुत सावधान, डर भी होना चाहिए साथ में और बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, और तब हमें जाके इन अभक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा हम अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग कर बैठेंगे। बड़े बड़े व्यक्तियों से ऐसा हो गया गलती, तो हमारा क्या है? प्रभुपाद जी हमें बता रहे केवल मैं और भक्तिनो ठाकुर कर पाए, और किसी और कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे मालूम चलता है कि बाहरी वातावरण से हमें अपनी स्वेच्छा के उपयोग में बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा था हमारा मन। हमारा मन, जैसे कि उस दिन हिजोरिनस नवयोगन स्वामी महाराज आए थे, वो क्या बोले थे, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब भी हम भक्ति में कुछ नया करना शुरू करते हैं, मन हमें रोकेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, या हमें दूसरे भक्तों में संदेह उत्पन्न करेगा, या उनकी कोई नेगेटिव बातों को दिखाएगा और हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। ये हर किसी के, ये मन की प्रकृति है। तो हमें मन से संघर्ष करना पड़ेगा। अगले ही श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि मनुष्य जीवन मिला है मन की बातों को ना मानने के लिए। जब तक हम मन की बातों को मानते रहेंगे, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और हमने देखा कि मेंटल प्लेटफॉर्म पे आके व्यक्ति पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है, कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है, अलग अलग विचार एक के बाद एक को किले बनाता रहता है, और जाके किस किले के अंदर जाके छिप जाता है। बहुत बुरी स्थिति हो गई, और क्या क्या सोच कर वो क्या क्या एक्शन ले रहा है, क्या क्या अपराध ले रहा है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए हमें माइंड की बातें नहीं सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर एटीट्यूड, सही तरह की चेतना, सही तरह का हमारा मानसिकता, हमारा रुझाव बहुत आवश्यक है। भागवतम की शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जब मिलते हैं तो अपना सब कुछ बताते हैं, कैसे वो पांडवों से संबंधित थे, उनके क्या क्या इच्छाएं हैं। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम की ग्लोरीज बताई, भगवान की महिमा बताई। भागवतम की महिमा बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरे के पूरे अध्याय, अगर दूसरा स्कंद देखते हैं, पहला दूसरा अध्याय, सारा का सारे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि ये भागवतम कैसे सुननी चाहिए। हम लोग भागवतम का गुणगान तो कर लेंगे, भागवतम की महिमा तो समझ जाएंगे, लेकिन जब तक भागवतम कैसे पढ़नी और सुननी चाहिए, भागवतम कैसे कीर्तन करना चाहिए, ये नहीं समझेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, बहुत कम लाभ होगा। अक्सर इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत है, इसमें अपने आप में बदलाव लाना है। बस भागवतम की महिमा, लेकिन महिमा से नहीं, उस महिमा को अपने अंदर उतारने के लिए, भागवतम से पूरा लाभ उठाने के लिए प्रॉपर एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर हम सुन रहे हैं तो बहुत ही विनीत भाव से, सबमिसिव और बहुत ही अटेंटिव, ध्यानपूर्वक, और हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं तो वो उदाहरण दे रहे हैं, वो योग्यता बता रहे हैं कि व्यास आसन में बैठने वाले व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं हैं। हर कोई व्यक्ति भागवतम का पाठ इस तरह से नहीं कर सकता। तो बड़े स्ट्रिक्टली हम लोग इन तरफ बातों की तरफ ध्यान देते नहीं और केवल भागवतम का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में भागवतम का संदेश उतरता नहीं है। ये भागवतम कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये हरिनाम कोई साधारण शब्द ध्वनि नहीं है, ये सब आध्यात्मिक हैं, आंतरिक हैं, और भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि इन चीजों के प्रति, दिव्य वस्तुओं के प्रति जो कि कृष्ण से अभिन्न है, हमारा क्या रवैया है, और उसी हिसाब से ये अपने आप को रिवील करेंगे। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, बहुजन कर यदि करे श्रवण कीर्तन ततोह नाम कृष्ण पद पाए प्रेम धन। कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं कि कई लाखों लाखों जन्म तक अगर हम अपने इस पुराने तरीकों से श्रवण कीर्तन करते रहे, कोई कृष्ण के चरणों में प्रेम धन नहीं मिलेगा। कृष्णदास कविराज जी हमें डरा रहे हैं, है ना। भक्ति तो बहुत ब्लिसफुल प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा बहुत डरा भी रहे हैं। तो इस डर को हमें देखना चाहिए। अक्सर कई बार हम ये श्रवण कीर्तन की फिलॉसफी चर्चा करते हैं तो हम लोगों को ऐसा बताते हैं, हमको सांत्वना देते, कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक आप हरिनाम का जप कर रहे हो सब जीवन में ठीक हो जाएगा। जब हो रहा है ना, बस ठीक, सब ठीक हो जाएगा, है ना। हम लोग ये देखते नहीं है कि हमारे अंदर जो हमारी चेतना दूषित है, जो हमारे अनर्थ हैं, उसको दूर करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना। उन्होंने बोले कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन, पतित पावन हेतु तब अवतार, वो सब हम पतित प्रभु ना पाई बे यार, मैं तो सबसे पतित हूँ तो मैं तो पतित ही रहूंगा, आप उद्धार तो कर ही देंगे, तो सेवा चैंटिंग करो ठीक हो जाएगा सब, है ना। तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति में भगवान अपना कार्य करते हैं और सेवक को अपना कार्य करना पड़ेगा। भक्ति टू वे प्रोसेस है, भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान है। चैतन्य महाप्रभु आके हमारे चित्त को साफ कर देंगे, लेकिन आपने कितना प्रयास किया। भक्ति का मतलब है सेवा, आपने कितना प्रयास किया, हमने कितना प्रयास किया अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। क्या इस प्रकार के जप से, जो ध्यान पूर्वक जप ना हो, क्या हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, अपने आप भक्तों के सारे गुण विकसित हो जाएंगे। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि इस भक्ति के प्रोसेस में अर्थ प्रवृत्ति भी है, अनर्थ निवृत्ति भी है, और निश्चित रूप से हमें अर्थ प्रवृत्ति पर भी ध्यान ज्यादा देना चाहिए, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन अगर हम अपने अनर्थों को से छुटकारा पाने की प्रेरणा ही नहीं है हमारे अंदर, हम चाहते ही नहीं है, दृढ़ इच्छा ही नहीं है कि हम अनर्थों से छुटकारा पाए, तो अर्थ प्रवृत्ति सही नहीं होगी। अगर हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पाना चाहते, उनके एज इट इज रखना चाहते हैं और साथ में भक्ति करना चाहते हैं, तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। भक्ति में प्रगति निश्चित रूप से कृपा पर निर्भर है, और कृपा हमें अपने प्रयासों के अनुसार मिलेगी। तो हमें प्रयास करता रहना चाहिए कि जो हमारे अंदर अनर्थ हैं, कैसे कैसे अनर्थ हैं, भक्तों के प्रति द्वेष, निंदा करने की आदत, निंदा सुनने की आदत, किसी को आगे बढ़ते हुए देखे अच्छा ना लगना, अपनी अपनी वाणी पे कंट्रोल ना होना, अपने खाने पीने पे कंट्रोल ना होना, और भक्तों के लिए गलत बातें करना, ये सब छोटे छोटे अनर्थ हैं। मैं कहता हूँ ये सब रखने दो, इसको रहने देता हूँ, बस यार थोड़ा थोड़ा माला कर लो, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। ये वास्तव में एक, जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियंस की अप्रोच है। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जीसस को सामने रख देते हैं और बोले जीसस जो है ना, ये आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। क्या करना पड़ेगा, बस इनसे थोड़ा प्रेम करो, इनको बोल दो आई लव यू, इनमें विश्वास रखो, बस इसे लॉकेट डालो, ठीक हो जाएगा। संडे के संडे जाओ, थोड़ा सा कन्फेस करो, कंसेशन लेके आ जाओ, कन्फेशन और कंसेशन, मेरे से पाप हो गया, माफ है, जाओ, जय जीसस, आई लव यू जीसस, हो गया काम, कोई बदलाव नहीं, वैसे के वैसे। तो हमारा भी यही है, पतित पावन भगवान है, गौर नेताई ने जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, मैंने तो किसी का रेप नहीं किया भैया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, ब्राह्मण की हत्या नहीं की, छोटे छोटे पाप है, भगवान पतित पावन है, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार करने के बाद क्या बोला था, दोबारा मत करना। भक्ति में आने के बाद हमारी गलत गलत छोटी छोटी आदतें वो अपराध का रूप ले लेती है, वो पाप का रूप नहीं लेती, वो अपराध का रूप ले लेती है। इसलिए प्रत्येक साधक को बहुत गंभीर होना चाहिए कि अपनी गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करें। फिर निश्चित रूप से जब हम प्रयास करेंगे, महाप्रभु की कृपा मिलेगी और हम इससे ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा अगर हम सोचेंगे नहीं, महाप्रभु ही कर देंगे, और दस क्रिश्चियंस की तरह हम जीसस को आगे रख के कर रहे हैं काम, ये ठीक नहीं है। इसलिए बोला जाता है, ये जो मानसिकता है, ये जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो वाली मानसिकता है ना। जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ये मानसिकता है कि देवी देवताओं के पास जाओ या किसी अपने वरिष्ठ भक्त के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, एक ही मानसिकता है कि इनसे ज्यादा से ज्यादा निकाल लो और इनको कम से कम दो, है ना। एक हार चढ़ा दो, सवा रुपए की बूंदी चढ़ा दो, सवा लाख की डील हो जाए, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा निकाल लो। ये है देवताओं के उपासक की मानसिकता। प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दुर्गा माँ की पूजा की, बोला अगर इच्छा पूरी हो जाएगी बकरीद चढ़ाऊंगा। इच्छा पूरी हो गई, बकरी चढ़ाई नहीं। दुर्गा माता सपने में आई, बोले भैया बकरी कहाँ है? बोला क्या करूँ, बहुत महंगी हो गई है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बड़ा ढीठ व्यक्ति है। दुर्गा माता फिर से, अच्छा भैया बकरी नहीं तो सुअर ही चढ़ा दो। बोले देखता हूँ, सुअर भी नहीं चढ़ाया। दुर्गा माता बोली हद हो गई। फिर से सपने में आई, अरे भाई उठ कंजूस मक्खी चूस, ना तूने मुझे बकरी दी ना सुअर दिया, कम से कम मक्खी तो दे दे। तो उस भक्त ने बोला इतनी मक्खियां भिन भिना रही हैं, पकड़ लो किसी को। मुझे, मेरे से क्यों मांग रही, खुद नहीं मांग कर सकते, है ना। ये मानसिकता है, ये डेमिगॉड वर्शिपर की मानसिकता है, देवी देवताओं के उपासक की ये मानसिकता है कि हम कम से कम सेवा करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लें। और भक्ति में आने के बाद भी हमारा यही एटीट्यूड बना रहता है, थोड़ी से थोड़ी सेवा करो और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले जाओ। इस्कॉन तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा करो बहुत कुछ मिल जाता है। नहीं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सिद्धांतिक रूप से हम मान रहे हैं कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जब उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो एक साधारण देवता वाला व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया और रिटर्न जितने हैवी मिलते हैं, बोले ठीक है इसी में प्रसन्न है। लेकिन भक्ति प्रभु भगवान से प्रसन्न नहीं होंगे। वो तो भगवान परम दयालु हैं, वो कहते हैं कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधार दी, कोई भी आ जाए मेरी शरण में इच्छा के साथ, बिना इच्छा के साथ, मोक्ष की इच्छा साथ, मैं उसको शरण देता हूँ। ये तो भगवान की महानता है। लेकिन भक्त के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, है ना। इवन भक्तों के पास हम जाते हैं, हम चाहते हैं मैं इस प्रकार जा रहा हूँ सारे के सारे मेरे संशय दूर हो जाए, इनसे आशीर्वाद भी मिल जाए, ये भी हो जाए, सारे हो जाए। आपने सेवा क्या की? आपने ऑफर क्या किया? ऑफर क्या करना है? गुरु महाराज ने 500 का नोट पकड़ा दिया, चलो भैया थोड़ा सा प्रश्न पूछा, 500 का नोट पकड़ा दिया, ठीक है ना, और क्या करूँ सेवा? नहीं, सोचते नहीं है, सब कुछ दे, समर्पण करें, तब देखिए ज्ञान आएगा। अपने आप को रोक के रखते हैं, वही मानसिकता डेमिगॉड वर्शिपर की मानसिकता। तो इससे भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए बताया गया है, जैसे हमें एक बार, अब कई बार उदाहरण शेयर कर चुके हैं आपसे, एक बार कि एक बार जब शुरू शुरू में इस्कॉन में जुड़े थे, 98-99 की बात है, तो ईसा कैलाश मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव था, इस्कॉन यूथ फोरम का स्टॉल लगा था, तो हमें वहाँ सेवा मिली। तो जब भी लड़के आ रहे थे सबको पकड़ पकड़ के बड़े उत्साह से बताते हैं, बहुत बढ़िया है, आप आइए आइए संडे को और यूथ फोरम प्रोग्राम अटेंड कीजिए, बड़े सेमिनार, स्ट्रेस दूर, ब्लिसफुल लिविंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा आपके जीवन में, एक बार आ जाइए बस। व्यक्ति सुनता रहा सुनता रहा, बोले यार इतना कुछ हो गया? मैं हाँ। कहता है इस संस्था ने आपको इतना कुछ दिया, आपने इनको क्या दिया? वो प्रश्न अभी तक हमें याद रहता है। तब तो उन्होंने फिरा दिया, घुमा दिया, बस यही तो इस संस्था की खूबी है, संडे को आना इतना कुछ मिलेगा, आप आइए। लेकिन बाद में हम सोचते हैं कि आपने क्या दिया। तो हर आने वाले भक्त को ये सोचना चाहिए, मैंने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया? प्रभुपाद से मुझे इतना कुछ मिला, मैंने प्रभुपाद जी के लिए क्या किया? मैंने, हम जो भी बात हो दिया, ये इस कॉम में ऐसी है, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, कुछ थोड़ी सी कमी होगी, ये ऐसे ही है। अच्छा, आपने क्या किया? वो कुछ नहीं, उसके बारे में हम सोचते नहीं है, कुछ नहीं सोचना। तो हर भक्त को ये सोचना चाहिए जो पहली बार आ रहा है, दूसरे, मैंने इस संस्था को क्या दिया जो मैं इतना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो हमें ऑफर करना है, ज्यादा देना है और पाने की इच्छा कम रखनी है, वो है उत्तम भक्ति। और उसमें हमारा भगवान से संबंध बनता है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की अपनी एक प्रकृति है, भगवान बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। बृहद भागवतामृत में अर्जुन नारद मुनि को बताते हैं कि मैं पागल हो जाता हूँ जब भी भगवान के चरित्र के बारे में सोचता हूँ, कि कैसे भगवान है, सबसे प्रेम करते हैं, अहेतु का प्रेम करते हैं, हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं अहेतु की। और हम देखते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान हमारा भूतकाल जानते हैं, भगवान हमारा वर्तमान जानते हैं, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। फिर कोई पूछ सकता है, अगर भगवान हमारा भूतकाल वर्तमान भविष्य जानते हैं तो फिर जीवात्मा की स्वेच्छा का लाभ है क्या? भगवान पहले से ही जानते हैं मेरे ग्राफ में आगे क्या आने वाला है, फिर मुझे स्वेच्छा का क्या, स्वेच्छा का मतलब क्या है? सोचा कभी इसके बारे में? अजीब सी बात है ना, एक तरफ से बोलते हैं वेदा हम समुदितना नहीं वर्तमान च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम च वेदा न कश्चन। सबका एक एक जीव का भूत वर्तमान और भविष्य जानता हूं। फिर स्वेच्छा क्या दे रहे, स्वेच्छा से तो मैं भविष्य बनाऊंगा। ये देखिए, ये जो भगवान की कृपा करने की आदत है, प्रेम करने की जो आदत है, ये प्रेम भगवान के ज्ञान को ढक देता है। प्रेम ज्ञान से भी महान है, और जब भगवान का ज्ञान ढक जाता है तो भगवान सारी आशाओं के विरुद्ध हम जैसे द्वेषी विद्रोही जीवों को सारी सुविधा देते हैं। अपने भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, अर्च विग्रह को भेजते हैं, अपना धाम प्रकट करते हैं, अपना नाम प्रकट करते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं कि कोई ना कभी तो इनके जीवन में अकल आएगी, कभी तो मेरी शरण में आएंगे, और शरण में आते ही भविष्य बदल देंगे। ये भगवान का प्रेम है हम सब जीवों के लिए, कि भगवान हम जैसे विद्रोही जीवों के लिए भी इतनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर विद्रोही जीवों के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनसे जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको कितनी सुविधाएं मिलती होंगी। और भगवान इतनी सुविधाएं देते हैं, और साथ में भगवान सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प का अर्थ है कि उनकी इच्छा तो पूरी होनी होनी है। तो जब भगवान इतनी सुविधाएं देते हैं और साथ में सत्य संकल्प है, तो क्या है, इस भौतिक जगत में भगवान से विद्रोह करते 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 कभी ना कभी जीवात्मा के मन में विचार आता है, चलो मैं भगवान की शरण ग्रहण कर, और फिर ये सारी सुविधाएं उसको मदद करती हैं। सारे भक्तों की कृपा, सारे शास्त्र अर्च विग्रह, सब भक्तों का संग, फिर वो भक्त आगे बढ़ता है। देखिए, ये भगवान की ये प्रकृति है। भगवान प्रेम करते हैं उन लोगों से भी जो प्रेम करने के योग्य नहीं है। हमें कोई व्यक्ति मालूम चल जाए ये व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, ही हेट्स मी, मेरी हर बात को विरोध करता है, हम ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाहेंगे? लेकिन भगवान जो मोस्ट अनलवेबल है, जिससे बिल्कुल जो प्रेम करने के योग्य नहीं है, उससे प्रेम करते हैं। कोई उदाहरण है इसका आपके पास? हम सब सब सोच रहे हैं कौन सा उदाहरण है, कौन सा वो असुर था जिसको भगवान ने प्रेम किया। हम सब देखिए, हमने झांक के देखे अंदर, कैसे गंदी गंदी इच्छाएं हैं, कैसे कैसे हम दिखावा करते हैं, फिर भी भगवान सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी भगवान प्रेम कर रहे हैं, फिर भी भगवान अपने भक्तों का संग दे रहे हैं, प्रभुपाद जी की शरण दे रहे हैं। ये भगवान का चरित्र है। हमें क्या करना है, केवल इन सुविधाओं का सही उपयोग करना है और भगवान की शरण ग्रहण कर रही है, बस। लेकिन हम एक कृष्णा कॉन्शियस की अंडरस्टैंडिंग में आ गए, हमें अच्छी फिलॉसफी लग गई। जब क्लास में बैठे होते हैं तो लोग सब कहते हैं यार बहुत बढ़िया बात बोली है, वाह, खिड़कियां खुल गई, कहीं बोलते हैं खिड़कियां खुल गई, क्या मतलब, सारे मिसकंसेप्ट दूर हो गए, है ना। ये वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु होती है, शमशान घाट में जाता है, अब शमशान घाट में आस पास शरीर जल रहे हैं, स्मेल आ रही है ना। कहीं हमारे पिताजी बताते थे कि उनके घर के पास भंगी रहते थे कोई, है ना, भंगियों में ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो जाए तो खूब दारू पीते हैं, उनका रिचुअल है, खूब दारू पियो और दारू पी कर ले जाते हैं जलाने के लिए, और फिर उसको जलाते भी हैं, और जलाते हुए उस समय स्थान पे ऐसे जाकर दारू पिया पियक्कड़ व्यक्ति भी है, बोला रहे यार देख क्या लिखा है शरीर में, सब जल जाएगा। मतलब इतना स्ट्रांग वैराग्य आता है कि बिल्कुल दारू पिया हुआ है पिताजी का, क्या बाप था हमारा, पिता रहता मर गया, देख जल गया सब, देखते हैं हम शरीर को जलते हुए, हाथ पैर थे जलते हुए देखते हैं, तो बेरा क्या है, क्या है, बाहर आते हैं फिर दारू पीनी शुरू करते हैं, है ना। वैसे हमारे साथ हैं, क्लास सुनते हैं बहुत बढ़िया बातें, अब सुनिए बहुत बढ़िया बात है, बाहर जाते हैं वही के वही, कितने बड़े बड़े लेक्चर सुन चुके हैं बड़े बड़े महाराज लोगों से, कितनी तालियां बजा चुके हैं, कितने हरी बोल बोल चुके हैं, बाहर जाते हैं सब वही, क्यों, ये क्या, कब हम इस भागवतम के, वैसे हमारी हालत हो गई, ये सारे फिलॉसफी कौन बोल रहा है, हिरण्यकश्यप बड़ी बढ़िया बड़ी फिलॉसफी बोल रहा है, आप भक्ति शास्त्री कर लीजिए, भक्ति वैभव कर लीजिए, तभी ये श्लोक नहीं बोल पाएंगे, ऐसे एग्जांपल ऐसा सांख्य योग समझा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप धड़ा धड़ बोल रहा है, क्या है ये बंदा, इतना अच्छा भक्त, और बाद में आके क्या करेगा, मंदरा पर्वत पे जाके इसी शरीर को नश्वर बनाने का प्रयास करेगा, यहाँ बोल रहा है शरीर नश्वर है, और वहां जाके हमेशा मृत्यु को पार करने का प्रयास करेगा। तो ये भी भगवान की इच्छा, भगवान कह रहे हैं फिलॉसफी अप्लाई नहीं करना चाहते, खाली बोलना चाहते हो, बहुत आपको स्किल्स दे दूंगा, इतना बढ़िया प्रवचन दोगे दुनिया बाप की बिल्कुल क्या बोले, आपके फैन क्लब बढ़ता ही जाएगा, है ना, सब बोलेंगे वाह 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 क्या बोलते हैं। और अप्लाई नहीं करना चाहते, बुला दूंगा उस समय बुला दूंगा, अप्लाई नहीं करना ना, बुला दूंगा, सड़ते रहो फिर यहाँ पे, हमारे ऊपर है। इसलिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों का संग करें। उस अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए हम प्रॉपर एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है। एक जैसे बुरा मत मानिए, किसी को बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है यूरिन का कल्चर टेस्ट करो। वो कल्चर टेस्ट का मतलब ही होता है, वो जो यूरिन का सैंपल लिया, इसको एक सही वातावरण में रखा जाता है। बैक्टीरिया भी पनपने के लिए उनको एक कल्चर चाहिए, वो देखते इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, वो देखने के लिए उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है, उससे वो बैक्टीरिया कम करते हैं। बैक्टीरिया को पनपने के लिए कल्चर चाहिए, हमारी भक्ति लता बीज को पनपने के लिए कल्चर नहीं चाहिए, प्रॉपर कल्चर चाहिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम मेंटेन कर सकें, इसको संभाल सकें। इसके लिए सही भक्तों का संग होना बहुत आवश्यक है, तब हम जाकर अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करेंगे, नहीं तो हम वही गलती करते रहेंगे बार बार, अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य की पहले ही लाइन में बता रहे हैं कि वह अपनी उच्च बुद्धि से, सही स्रोत तथा गुरु या आचार्य से प्राप्त श्रेष्ठ ज्ञान शक्ति से बद जीवन को भौतिक शरीर में छोड़कर भगवत धाम वापस जा सकता है। यानी इस ज्ञान के आधार पर हम अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जब हम अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करते हैं तो भक्ति करना बड़ा आसान हो जाता है। भगवान असीमित सुविधाएं प्रदान करते हैं, भक्ति करना बहुत सरल है अगर अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग करें, और अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं क्योंकि भगवान के प्लान के अपोजिट जा रहे हैं, भक्ति बहुत मिस्ट्री बन जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है। हो क्या रहा है कि हम अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग कर रहे हैं, हम सही वातावरण में नहीं है, हम अपने मन की बात सुन रहे हैं। इसलिए सही वातावरण में रहते हुए, सही तरह के भक्तों के संग में रहते हुए, और अपने मानसिक एटीट्यूड जो हमारी चेतना है इसको उत्कृष्ट करते हुए हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको संभालने के लिए हम सही वातावरण में रहें, और फिर अपनी हम स्वेच्छा का सही उपयोग करें। हम देखेंगे कि भगवान कैसी कैसी सुविधाएं हमारे को भेजेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हर बार ही हम अपने गलत स्वेच्छा का गलत उपयोग करते हैं, हम बोले भगवान कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, यहाँ गुरु भी हेल्प नहीं कर रहे, यहाँ तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स हमारे अंदर है, हमने कॉम्प्लिकेशन किया हुआ है, जो हमें आचार्यगण बता रहे हैं उसको हम उसके बातों को माने, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। भगवान की ऐसी नेचर है, भगवान यहां तो बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता को सही उपयोग नहीं करता, भगवान भक्तों के आगे अपनी फ्री विल समर्पित कर देते हैं। भौतिक जगत का फार्मूला है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, जब हम भक्ति में उन्नत हो जाते हैं, अध्यात्म जगत में जाते हैं, वहां का फार्मूला है गॉड प्रपोजेस डिवोटी डिस्पोजेस, भगवान प्रपोजल लगते हैं, भैया मैं ये करना चाहता हूँ, भक्त उन्हें देखते हैं, भगवान बोलते हैं यशोदा माई बुला रही, मैं चला जाऊँ, सब कहते हैं खबरदार जो गया, अभी वापस घर में गए, कल खेलने के लिए बारी नहीं आएगी, पहले बारी देके जाओ हमारी। यशोदा माता बुलाती रहती है कृष्ण बेचारे ग्वाल बालों के साथ, पूरी बारी दे के फिर वापस जाते हैं, भगवान प्रपोजल दे रहे हैं, ग्वाल बाल कहते नहीं जाने देंगे, है ना। खांडव वन में आग लगी, अग्निदेव खांडव वन को खाना चाहते थे, और वहाँ पे इस खांडव वन में मैं दानव रहते थे, मैं दानव को मारने के लिए भगवान ने भी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और अग्निदेव भी उसके पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते हुए मैं दानव ने आके अर्जुन की शरण ले ली, अर्जुन ने तो भगवान जब भागते भागते आए देखा किसकी शरण में है, अर्जुन की शरण में है, भगवान ने उसको मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ है, लेकिन अर्जुन की शरण में सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। देखिए भगवान को अहंकार नहीं है, भैया मैंने मारने की सोच रहा हूँ पीछे हट ना, हम कोई काम कर रहे हो साथ में, कोई दूसरा भक्त आ जाए बोले देखो पहले मैंने एक्शन लिया, चलो पीछे हटो, और बंदा वो व्यक्ति हमारी बात ना माने तो आपस में मतभेद हो जाते, लड़ाई हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन के साथ कोई लड़ाई नहीं रही, अरे अर्जुन की शरण में कोई बात नहीं, सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया, और बड़े प्रसन्न हुए कि मैं दानव ने जिसको भगवान मार रहे थे अर्जुन की शरण ले ली, और अर्जुन ने उनको प्रोटेक्शन दी, भगवान ने भी प्रोटेक्शन दिए। फिर उस मैं दानव ने बोला कि मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? अर्जुन ने बोला कोई सेवा नहीं। भगवान ने बोला नहीं, आप युधिष्ठिर की सेवा कीजिए, उनके लिए कोई बहुत ही विचित्र महल बनाइए। तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ में वो महल बनाया। भगवान की कृपा से हमें भक्तों की सेवा मिलती है। मैं दानव को सेवा मिली है युधिष्ठिर की, भगवान की कृपा से। तो भगवान अपनी स्वतंत्रता बड़े प्रेम से भक्तों को समर्पित कर देते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बोलते हैं, डिवोटी इज द सुपर सोल ऑफ द सुपर सोल। सुपर सोल हम सबके अंदर है, जो हमारी इच्छाओं को देखते हैं और सैंक्शन करते हैं। लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं, वो परमात्मा की इच्छाओं को जानकर उनकी इच्छाओं को सैंक्शन करते हैं। ये अगर हम अपनी फ्री विल, अपनी स्वेच्छा भगवान को समर्पित करते हैं, तो बाद में भगवान की स्वेच्छा हम पूरी करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी कहते थे कि हम भगवान बनेंगे, वैष्णव भगवान नहीं, भगवान के पाप बनेंगे। भगवान को डांटेंगे, भगवान को कंट्रोल करेंगे। भक्ति में प्रभुपाद कहते हैं केवल सबॉर्डिनेट होने की बात है। इतने जिद्दी लोग देखो हम लोग, थोड़ा झुक जाओ, सबॉर्डिनेट हो जाओ, भगवान के बाप बन जाओगे। भाई हम झुकना नहीं चाहते, हम अपने बस इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है करो, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं थोड़ा झुक जाओगे मेरे बाप बन सकते हो। नहीं, हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक से हम जानते हैं, देखिए भगवान का कितना महान चरित्र है। भगवान हमेशा हर स्थिति में कितने तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए। असीमित रूप से भगवान सुविधाएं देते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। हमें उन सब सुविधाओं का अच्छा उपयोग करना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन पाकर हमें प्रभुपाद जी की शरण मिली है। अब ये हमारा स्वयं तेजसा, अपने तेज से हमने प्रगति करनी है। अपनी इच्छा से हम प्रगति कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा का हम सही उपयोग तब कर सकते हैं जब हम सही वातावरण में रहें और सही मानसिक मेंटल एटीट्यूड रखें ना, अपने मन के ना सुनते हुए अपने सुपीरियर नॉलेज, जो उच्च ज्ञान हमें मिलता है उच्च स्तोत्रों से, आचार्य गणों से, भक्तों से, शास्त्रों से, जब करेंगे प्रगति, फिर भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हमें डायरेक्ट इंस्पिरेशन देंगे। डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत महाराज जी को जब कोई इंस्पिरेशन, कोई एडवाइस लेनी होती थी, तो मायापुर में राधा गंधर्व का गिरधारी, गंधर्व का गिरधारी जो मंदिर है, वह सब ऑल्टर बंद करके उनके सामने बैठ जाते थे और गंधर्व का गिरधारी जी उनको फिर सजेशन देते थे। हम लोग नकल नहीं मार सकते ऐसे, लेकिन उस स्टेटस की बात है ना। तो भगवान इंस्पिरेशन भी देते हैं डायरेक्ट, अगर हम भक्ति में उन्नति करते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद के, निताय गौर प्रेमानंद है।